आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सावन कुमार आपके साथ, और मैं लेकर आया हूं लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 9 भाग 1 का चैप्टर नंबर 3 का अगला टॉपिक, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक। प्रिय बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि चुनाव कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन खड़े होते हैं, कैसे वोटिंग की जाती है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सबों ने इसे जरूर इंजॉय किया होगा। आइए आज हम इसके आगे चलते हैं कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। प्रिय बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमने इस चैप्टर के, इस किताब के शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि क्या जो कौन से चुनाव लोकतांत्रिक है, और अगर चुनाव लोकतांत्रिक हैं, जो जो चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव की कसौटियां हैं, उनके जो क्वालिटी हैं, क्या वो भारत में है। आइए आज हम इसी का परीक्षण करेंगे। प्रिय बच्चों, यहां मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्लीज कृपया आप इसे प्रैक्टिकल वे में भी देखें। यहां आप सुने, किसी से चर्चा करें, बातें करें, थोड़े बहुत अखबार देखें, तो इन सबों से आप इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए मैं यह टॉपिक शुरू करता हूं। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है, मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। देखिए, अब आप टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इसने तो चुनाव में गड़बड़ी करके जीत हासिल कर ली, चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई है, जो पार्टी है हमें वोट नहीं देने गया। तो किस किस तरह की गड़बड़ियां होती हैं कि भाई मतदाता सूची है तो जो मर गए हैं उनका भी नाम है, जो यहाँ है ही नहीं उनका भी नाम है, पता चला कि अब जो शासक दल है वो अपनी जो सुविधाएं उनको मिली हैं, सरकार ने गाड़ी दी है कि आप अपने जनता का विकास करें, जनता का अपने क्षेत्र का दौरा करें, तो पता चला उसे वो अपने चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। फिर ये भी चलता है कि भाई जो अमीर उम्मीदवार हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो बहुत बड़े मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं, कहीं वो भोज आयोजित कर रहे हैं, कहीं मतदाताओं को गिफ्ट दे रहे हैं। फिर और भी हो रहा है कि कुछ जो बाहुबली और अपराधी किस्म के हैं वो मतदाताओं को डरा रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द आपको मिलेगा, चुनावी धांधली। देखिए, धांधली मतलब तो आप जानते हैं, धोखेबाजी करना, तिकड़म भिड़ाना कि ठीक है ऐसे वैसे, किसी मतलब छल प्रपंच, धोखेबाजी करना। तो चुनाव में जब धांधली करेंगे तो वो चुनावी धांधली होती है। तो ये मतदाताओं को डराना और किसी और के जगह पे किसी और से वोटिंग करवा देना, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। प्रिय बच्चों, देखिए, एक तो वोटिंग एक पर्व की तरह लिया जाता है भारत में। बहुत सी कोशिशें होती हैं, बहुत लोगों से अपील भी की जाती है कि हम वोट दें जाके, तो लेकिन जब हम देखते हैं कि कहीं पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहाँ वोट गलती डाले जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारा अधिकार छीन गया है, जो सही शासक चुनने का अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है, तो हमें तकलीफ भी होती है। लेकिन ये घटनाएं बहुत कम होती हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि अब दूध है, उसमें से अगर एक बूंद भी नींबू या दो चार बूंद भी नींबू के रस चल जाए तो दूध तो फट ही जाता है, तो ऐसे में हमारा मन भी थोड़ा विचलित हो जाता है। लेकिन देखिए, अब अगर दूध फट भी जाए तो हम उसे फेंक तो नहीं देते हैं, उसके पनीर को खा जाते हैं, तो ठीक है, चुनाव का उद्देश्य बेकार नहीं होता। ठीक है, ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन अब वर्तमान समय में, इस दौर में जब टेक्निक का इतना प्रयोग हो चुका है, लोग भी जागरूक हो चुके हैं, तो इस तरह की घटनाओं में निरंतर कमी भी आती जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आज भी ये घटनाएं इसी ढंग से बनी हुई हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो ये चुनाव जीतकर जो सत्ता में आना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता का सुख सबसे अच्छा लगता है ना, कि सब कोई चाहता है कि हम सरकार बनाएं, तो ये जो चुनाव धांधली होती है इसको कैसे रोका जाता है? स्वतंत्र चुनाव आयोग, चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं इसे जांचने का एक सरल तरीका है यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव बनाती है, उन पर प्रभाव, दबाव और प्रभाव बनाती है। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? देखिए, बड़ी बात ये देखा जाता है कि जो चुनाव किए जा रहे हैं, जो चुनाव कराए जा रहे हैं, उन्हें कौन करवा रहा है और जो करवा रहा है वो क्या है? क्या वो फ्री है या वो किसी के बंधा हुआ है? देखिए, अगर वो सत्ता से बंधा होगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है, आपने पढ़ा ना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मतलब क्या, जो उसे करवाने वाला है वो किसी के पक्ष में ना रहे और उसके पास इतनी शक्तियां तो कम से कम होनी ही चाहिए कि वो किसी से डरे भी नहीं। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त बात कही गई है कि चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे, कह देंगे भाई आप बनिए, लेकिन उसे हटा नहीं सकते आप। लगभग उसका हटाने की जो प्रक्रिया बहुत जटिल है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेंगे। सिर्फ आप नियुक्त कर सकते हैं, बाकी अपॉइंट कर सकते हैं, बाकी जो भी उनके बारे में फैसला लेना है उसके आप, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। मतलब वो जो काम करेंगे उसके लिए वो राष्ट्रपति को जवाब नहीं देंगे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सरकार को जवाब नहीं देंगे। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। आप समझ सकते हैं, किसी भी देश में चुनाव करवाने वाली संस्था को इतने अधिकार प्राप्त नहीं है। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। चुनाव आयोग तय करता है कहां चुनाव होगा, सूचना जारी कर दी जाती है कि भाई ठीक है चुनाव होगा, होने ही वाला है। तो इस तरह से चुनाव तय होते हैं, चुनाव आयोग तय कर देता है कि कहां से चुनाव लड़ने हैं, किस राज्य में चुनाव होने हैं, फिर उसके बाद जो भी और भी जो उसके तकनीक है उसके उस पहलुओं पर बातें कर ली जाती हैं। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। अब आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है, जो उल्लंघन करेंगे तो उनके पार्टी की सजा देगी, आप खड़े नहीं हो सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। आप देख रहे हैं, सरकार को दिशा निर्देश मानने का मतलब आदेश तक दे सकती है निर्वाचन आयोग, मतलब एक तरह समझिए सरकार से भी ऊपर है कि आपको ऐसा करना है, और जब जिस अधिकारी को वो चाहे तबादला कर सकती है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। कि जो चुनाव अधिकारी वहां काम कर रहे हैं, जो देख रेख रहे हैं कि चुनाव हो रहा है, वोटिंग पड़ रही है, वो सरकार के कहने पर काम नहीं करेंगे, वो निर्वाचन आयोग के कहने पर काम करेंगे। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव ना था। आप देख रहे हैं, एक तो सरकार को फटकार लगा सकती है, अब निर्देश आदेश भी दे सकते हैं, जितने अधिकारी हैं सब इनके कंट्रोल में रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं, और अगर मान लीजिए कहीं इन्हें लगता है ना कि आज चुनाव गड़बड़ हो गए हैं, वोटिंग नहीं पड़ी है सही से, तो वो फिर से आदेश दे सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी ताकत है। आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि लोकतंत्र में जनता जिन्हें चुनती है वो सर्वोच्च शासक होते हैं, लेकिन आप यहां देख पा रहे हैं ना, यहां आप देख रहे हैं कि इससे भी सर्वोच्चता किसकी है, चुनाव आयोग की। तो भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग है। देखिए फिर से मुन्नू आपसे प्रश्न पूछ रहा है, चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति क्यों है, क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या लगता है प्रिय बच्चों आपको? मुझे तो लगता है कि देखिए बिल्कुल अच्छा है, इतनी शक्तियां हैं तब तो वो चुनाव सही से करवा पाता है, क्योंकि जो शक्तिहीन होगा अगर चुनाव आयोग सरकार के दया पे होगा तो फिर सरकार अपनी मनमर्जी करेगी। तभी तो निस्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जरूरी है कि हम चुनाव आयोग को इतनी शक्तियां दें। आप क्या सोचते हैं बच्चों? आइए यहां पर फिर से कुछ प्रश्नों से आपका सामना हुआ है, देखते हैं ये प्रश्न। यहां पे कुछ इन सुर्खियों को ध्यान से पढ़िए और पहचानिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग के चुनाव के लिए चुनाव आयोग किन किन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। प्रिय बच्चों आप इसे देखकर आराम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की, तो चुनाव अभी आपने पढ़ा कि उसे ये शक्ति होती है कि ठीक है आप जब चाहे चुनाव की घोषणा कर सकते हैं, उसका कर रहा है। बिहार के चुनाव में मतदाता के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य, देखिए ये भी चुनाव आयोग की एक शक्ति है। चुनाव आयोग इसमें हम इन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है कि भाई हम किस सरकार को निर्देश दे सकते हैं, या आदर्श संहिता है चुनाव के दौरान जो भी होने वाले जो भी नियम कानून है उसमें अपनी शक्ति दिखा सकते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी, देखिए यहाँ भी चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए नकेल कस रहा है कि भाई जो अमीर आदमी हैं जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो चुनाव को प्रभावित ना कर दें। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी जैसे देखिए राजनीतिक विज्ञापनों पर सेंसर का अधिकार हो, यहाँ चुनाव आयोग ये मांग अपने अधिकार को मांग रहा है कि भाई मुझे अपना अधिकार चाहिए, अपनी शक्तियों को और बढ़ा रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। तो इसे अगर आप देखें और ऊपर में जो वो 3-4 पैरा दिए हुए हैं तो आप उसे पढ़ने के बाद कुछ का मैंने आपको बताया है तो कुछ के उत्तर आप दे सकते हैं कि चुनाव आयोग अपनी किन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। देखिए यहां पर एक आपको चुनाव में लोगों की भागीदारी है, देखिए अब कोई भी चीज में आप कब पार्टिसिपेट करते हैं, कब भाग लेते हैं, जब आपको मनोरंजक लगता है। मान लीजिए आप अपनी कक्षा में गए और शिक्षक ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपकी आंखें बंद हुई जा रही हैं, कुछ दिख और सूझ नहीं रहा है, आप घड़ी 25 बार देख रहे हैं कि कब छुट्टी हो और मैं घर जाऊं, तो आपको उस क्लास में अच्छा ना लगेगा और आप भागीदारी भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही बड़ी इंटरेस्टेड सी क्लास है, शिक्षक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, आप भी बहुत खुश हैं, तो आपको लगेगा कि घड़ी की सुइयां थम जाए, है ना, तो आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी, आप उस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना चाहेंगे। तो एक पैरा ये भी होता है कि चुनाव में लोग भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि चुनाव में लोग भाग क्यों लेते हैं। मान लीजिए कि अगर मुझे ये पता चलता है कि चुनाव में धांधली होती तो मैं सोचूंगा यार क्या फायदा लेने से भाग, आखिरकार तो उन्हीं को बनना है। तो अगर चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करूंगा। आइए इस दंडालेख को देखें, यहाँ पे भारत और ब्रिटेन, भारत नीली लाइन, ब्रिटेन लाल लाइन, उसके ऊपर देखें मतदान का प्रतिशत है जो कि 1:10, 20, 30 इस रेशियो में है। फिर वर्ष दिए गए हैं, देखिए 1991 से लेके 2015, इन 24 सालों में शुरुआत के दौर को आप देखें तो भारत में चुनाव का प्रतिशत बहुत कम 56 था, उस समय इंग्लैंड में 78% होते थे, यानी कि वहां के चुनाव अच्छे थे। फिर आप देख रहे हैं ना कि भारत में धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और 2015 आते आते भारत और ब्रिटेन में लगभग लगभग स्थितियां समान हो गई, लगभग लगभग। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, भारत में यह या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। आप देख रहे हैं कि यूरोप अमेरिका के जो शिक्षित देश हैं, सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड है, वहां पर वो जो वोटिंग है वो घट रही है, लेकिन भारत में
धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और अगर नहीं भी हो रही है तो लेवल उसका वही रहा है, डाउन नहीं होने दिया गया, लगभग लगभग वही रहा है। और आप देखें इंग्लैंड का 78 से 66 पे आ गया, एक समय तो 59 पे चला गया था, लेकिन भारत देखिए 56 है, फिर 58 है, 62 है, फिर थोड़ा सा 60 है, फिर और तो बढ़ता ही चला गया है। तो भारत में स्थितियां कैसी हो रही है, यानी भारत में लोग चुनावों को बड़े ही उत्साहपूर्वक ले रहे हैं। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। आप देख रहे हैं कि भारत में तो गरीब हो, निरक्षर हो, गांव के लोग हो, बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। इसका मतलब सोचिए कि कितने जागरूक हैं लोग यहाँ के। आइए ये प्रतिशत आप देखें, तो ये जो भारत का है और एक तरफ अमेरिका का है। तो भारत में आप देखिए ऊंची जातियां हो जाए, पिछड़ी हो जाए, अनुसूचित जाति हो जाए, बल्कि और अनुसूचित जनजाति तो बहुत बड़े स्तर पर कर रही है। आप देख रहे हैं ना ऊपर, ये कब के हैं, तो 2004 के हैं। 2004 के आंकड़े देखिए। अब अमेरिका में देखिए गोरे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अश्वेत बेचारे उनसे कम कर रहे हैं, और हिस्पैनिक तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मतलब अश्वेतों और हिस्पैनिकों को यह लग रहा है कि नहीं, चुनाव तो एक तरफा है, गोरे लोग ही सरकार बनाएंगे, इसलिए वो वोट नहीं कर रहे। लेकिन भारत में देखिए ऊंची जातियां हो जाए, पिछड़ी हो जाए, जनजाति हो जाए, अनुसूचित जाति हो जाए, सब वोट कर रहे हैं। सबको ये मालूम है कि भाई नहीं, यहाँ के चुनाव बड़े निष्पक्ष होते हैं, इसलिए सब वोट कर रहे हैं। तो इस तरह से भी तय किया जाता है कि वहां के चुनाव कैसे हैं। प्यारे बच्चों, क्या लगता है आपको, क्या भारत का चुनाव लोकतांत्रिक है? मुझे तो लगता है भाई 100 में 100 नंबर दिए जाने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं विकसित देशों की तुलना में भी हम काफी आगे खड़े हैं। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम सोचते हैं कि नहीं, हम असली में समझते हैं भारत के लोग कि हम लोकतंत्र हमसे है, हम लोकतंत्र की असली परिभाषा जानते हैं कि हम ही, हमसे सरकार है, और हम सरकार को अपने हितों के हिसाब से ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, उसे निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा हथियार क्या है, वोट, और इसका हम खूब प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सर्वे है, क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है? राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन 2004, देखिए 2004 में क्या कह रहे हैं, 67% लोग कह रहे हैं हाँ हाँ फर्क पड़ता है, मैं मानता हूं। देखिए 18% वो कह रहे हैं भाई फर्क नहीं पड़ता, और 15% तो सियोर ही नहीं है कि है नहीं, यानी बहुत बड़ी मेजोरिटी मानती है कि मेरे वोट से फर्क पड़ता है। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बात कि 7 व्यक्ति है तो भाई एक कह रहा है मैं तो बीजेपी का हूं, भाई मैं कांग्रेस का हूं, यानी कि कितनी गहरी पैठ है राजनीति की, यहाँ कितनी ज्यादा समझ है लोगों की राजनीति की। आप नीचे का एक बार ग्राफ देखें, भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी भागीदारी गतिविधि में भाग लेने वालों का प्रतिशत, कि भाई आप रैली कर रहे हैं, झंडा ढो रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, ये भी है उसमें भाग ले रहे हैं, तो 1996 में आप देखें मात्र 8 था, लेकिन 2004 में देखें सिर्फ 8 वर्षों में ये 4 गुना प्रतिशत बढ़ गया। आप देख रहे हैं 32 पहुंच गई प्रतिशत। तो इससे देखिए कि भारत में लोग चुनावों को कितने ज्यादा सीरियसली लेते हैं, बिल्कुल एक पर्व की तरह लेते हैं, और भारत में माना भी जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है। अपने परिवार, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको करने और सीखने के लिए दिया गया, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं आपसे कहता भी हूं कि प्लीज इसे एक बार कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अपने परिवार के जो सदस्य मतदाता हैं उनसे पूछें कि उन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोट दिया था या नहीं। अगर उन्होंने वोट नहीं दिया हो तो उनसे इनका कारण पूछिए। अगर उन्होंने मतदान किया हो तो उनसे पूछिए कि उन्होंने किस पार्टी और किस उम्मीदवार को वोट दिया और क्यों दिया। उनसे यह भी पूछिए क्या चुनावी सभा या रैली में शामिल होने जैसी किसी चुनावी गतिविधि में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। देखिए ये तो मतलब आज से आपको पता चलेगा कि हम आम जनता चुनावों के बारे में क्या सोचते हैं। हम वोट देते हैं तो अगर मान लीजिए हम वोट नहीं देते तो कौन से कारण है जिसके कारण से हम वोट देना नहीं चाहते हैं या वोट नहीं देते हैं। फिर हम गतिविधियों में भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो नहीं लेते हैं तो क्यों लेते हैं। तो एक तरह से आपके लिए वो जीवंत उदाहरण होगा। और बाकायदा आप भारतीय चुनाव जो कि बहुत ही महापर्व है, बिल्कुल आप कह सकते हैं एक अद्भुत परिघटना है विश्व की, भारत चुनाव वर्ल्ड का बिल्कुल एक तरह से आप समझे कि बिजारे फिनोमेनन है, उसके बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत गहरे अर्थों में समझ सकते हैं। प्रिय बच्चों आइए मैं आपको अगले टॉपिक पे ले चलता हूं, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती, कोई भी नहीं करेगा। आप ही मान लें परीक्षा में आपने उत्तर लिखे और आपके शिक्षक अगर गड़बड़ करके नंबर दें, भेदभावपूर्ण तरीके से नंबर दें, जो उनके प्रिय हैं उन्हें नंबर दे दें, तो आप क्या स्वीकार करेंगे रिजल्ट? नहीं करेंगे कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ी है। कब करेंगे? जब एकदम निष्पक्ष ढंग से जाँच हो, जो प्रश्न आपने लिखे और आपके विद्यार्थी ने लिखे अगर दोनों के सही उत्तर हैं तो बराबर मार्क्स मिले। तो जो पार्टियां हार जाती हैं अगर चुनाव में धांधली हुई है तो रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी ही हैं। ऐसा नहीं है कि 20 साल 30 साल से की है। शुरू में मान लीजिए कि कांग्रेस की रही, विपक्ष नहीं था, फिर विपक्ष आए, तो अब तो कभी वो जीतती है, कभी ये जीतती है, कभी वो जीतती है, प्रतिस्पर्धा चली है। और जरूरी नहीं है कि आप केंद्र में जीत गए तो राज्यों में जीत जाए, आप यहां हार जाएंगे। मान लीजिए जैसे आप देख रहे हैं कि मोदी जी तो बना चुके हैं सरकार, भाई दिल्ली में उन्हीं की है, प्रधानमंत्री हमारे, लेकिन दिल्ली में हमारे केजरीवाल साहब जीत गए। ये अलग बात है कि केजरीवाल साहब जिस तरह के काम करते हैं आप उन्हें केजरी बवाल भी कह सकते हैं, खैर ये तो आपकी इच्छा हुई। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निर्वर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। देखिए अमेरिका में एक बार बन जाइए फिर क्या दिखा, कोई मतलब है, एक बार बन जाए फिर आप शायद ही कभी हारेंगे, हो गया अपराजय अजय। लेकिन भारत में 50% जो पिछली बार जीते हैं वो इस बार हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उसका भी चुनाव हारना बहुत आम है। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप जीत जाएंगे, कई बार ऐसा होता है हारते ही हैं। आपको अगर ना हो तो शायद अंबानी साहब चुनाव लड़के देख लें कि वो जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। मैंने कहा ना कि अगर आपकी वो स्थिति है केजरीवाल साहब जैसी तो आप कहेंगे अरे ईवीएम गलत था, उसमें तो बिल्कुल गलती है। जब चुनाव आयोग साबित कर दे, सब कोई साबित कर दे कि ईवीएम सही है, फिर भी आप क्या कहेंगे कि नहीं नहीं ईवीएम ही गलत था, हमने तो बहुत सही काम किया, पता नहीं जनता ने हमें क्यों नहीं चुना। तो इन बातों को भी किया जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां, देखिए प्यारे बच्चों जो चीज अच्छी होती है जरूरी नहीं है वो आसानी से हो जाए। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कुछ चुनौतियां हैं, कैसे? इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू ना होती हो, कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं और यही चीज भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। हो सकता है कि कोई जाति के आधार पर जीता हो, धर्म के आधार पर जीत गया हो, पैसे के आधार पर जीत गया हो, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो जनता की इच्छा के अनुरूप जीतते हैं। सिर्फ पैसा, जाति या धर्म ही आपको नहीं जिता सकता, इसमें बहुत सी चीजें होती है। जनता की इच्छा को आमतौर पर इसमें रिफ्लेक्ट किया जाता है, प्रतिबिंबित किया जाता है। तो ये जो सामान्य सा नियम है जब से भारत आजाद हुआ तब से ही चल रहा है और इसी नियम के कारण हम बिल्कुल सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमारा जो चुनाव, भारतीय चुनाव प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है। आप देखें यहाँ जबरदस्त कार्टून दिखाया गया है, यह कहने की क्या जरूरत थी कि हम अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया। देखिए अब यह नेता साहब में भाई भतीजावाद है। इस कार्टून में एक नेताजी को संवाददाता सम्मेलन से बाहर आते हुए दिखाया गया है। और वे भाई भतीजावाद के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या भाई भतीजावाद कुछ राज्यों और पार्टियों तक ही सीमित है? देखिए, ऐसा तो माना जाता है कि भारतीय राजनीति में ये है, लालू यादव जी जेल गए तो उनके दोनों बेटे बिना किसी योग्यता के हैं, हमारे कांग्रेस के जो सबसे बड़े हैं महासचिव राहुल गांधी जी, उनकी स्थितियां भी लोग जानते हैं, तो ये भाई भतीजावाद हुआ कि आप हैं आपके बाद कोई भतीजा आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये कह रहे हैं अरे क्या बोल दिया यार, जितना भी टिकट जीता है ठीक है उम्मीदवार को दिया, तो उसमें मेरे रिश्तेदार थे, सब बोलने की क्या जरूरत थी? मतलब भाई भतीजावाद अपने चरम पर है, तो भारतीय राजनीतियों पर भी ये आरोप लगते रहते हैं। पर जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। देखिए, अभी सब कुछ सावन के हरा की तरह हरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं। आप कोई मामूली नागरिक है जो टीचर है, शिक्षक है, बड़े अच्छे हैं, उनको समझ भी, आप उन्हें खड़ा कर लीजिए, क्या वो जीत पाएंगे? नहीं। वो आजकल तो कहा जाता है कि पैसा आपको पानी की तरह बहाना पड़ेगा, जितने भी पहले था कि कुछ कुछ अपराधी खड़े होते थे, अब तो सारे अपराधी ही खड़े हो जाते हैं, तो सब खूब पैसा बहाते हैं, जनता भी पैसा लेना गुनाह नहीं समझती है, चार पांच लोगों पार्टियों से ले लो और भाई किसी एक को वोट डाल दो। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो पैसे वाले हैं वो भी चुनाव जीत रहे हैं, अपराधी डरा धमका के जीत रहे हैं, या हो सकता है आपको लगता हो कि अपराधी है बाद में अपना काम कर देगा, काम निकालने की वजह से भी ऐसे लोग जीत रहे हैं, चापलूस किस्म के लोग आ रहे हैं। तो ये सब कुछ समस्याएं हमारे चुनाव व्यवस्था के सामने है। जैसे देखिए, कुछ मुद्दे यहां भी उठाए गए हैं, ज्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीकों से चुनाव जीत ही जाएंगे, यह कहना मुश्किल है पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है, ये बात तो है। अब एक टीचर खड़ा हो जाए तो भाई वो पर्चे वर्चे कर रहा है ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो पैसे पर हैं, पैसे का लोभ डिगा देता है, प्रोफेसर साहब अच्छे आदमी है लेकिन अभी मुझे 1000 रुपया मिल रहा है, भाई मैं क्यों प्रोफेसर को वोट दूं, 1000 रुपये हैं, मछली भात मैंने खाया तो वोट तो इन्हीं को दूंगा जिनसे लिया है, आखिर आपने सुना भी तो था ना सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो भाई आपने आपका पैसा खाया है तो वोट तो आप ही को देंगे, जो हुक्म मेरे आका, इस तरह से वोट दे जाते हैं। तो इस वजह से जो अच्छे उम्मीदवार होते हैं, जो थोड़े से पैसे वाले नहीं होते हैं, उनसे उनकी स्थिति बेहतर हो जाती है। देखिए, यहाँ पे एक कार्टून भी आपको दिया गया है कि चुनावी अभियान शीर्षक वाला यह कार्टून लातिन अमेरिका के संदर्भ में बना था, क्या यह भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों पर भी लागू होता है? लातिन अमेरिका में आप देख पा रहे हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो फर्स्ट हैं, थोड़ा कम है तो सेकंड आएंगे और थोड़ा थर्ड, मतलब आपकी ईमानदारी योग्यता और कर्मठता का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, भारत में भी कुछ ना कुछ ऐसा तो है ही, भले आप पढ़ लें कि मैं सुशिक्षित ईमानदार कर्मठ जुझारू व्यक्ति को वोट दीजिए, ऐसा होता नहीं, कुछ होते भी हैं लेकिन बाकायदा पैसे वाले लालची भ्रष्ट और बेईमान होते हैं, उनके जगह वो होते हैं, ऐसा भारतीय राजनीति में अक्सर सुनने को आता है। यहाँ पे आप देखिए कि आर के लक्ष्मण ने कितना अच्छा कार्टून बनाया है कि जिस दिन आप वोट देने जाते हैं एक आम आदमी वोट देने गया है, उनके कार्टूनों में आम आदमी अक्सर होता था, तो वोट देने गया है, कैसे सारे नेता छोटे छोटे हैं उनसे मांग रहे हैं अरे हमें वोट देना हमें वोट देना, और वो आदमी सोच रहा है भाई मैं किसे वोट दूं, उस समय कितना बड़ा है और सारे नेता कैसे बिल्कुल छोटे छोटे मेढकों की भांति कूद रहे हैं। फिर देखिए, आपने वोटिंग कर दी, कल हो गया वोटिंग, पता चल गया कौन जीते हैं कौन हारे हैं, और फिर अब आप क्या है, अब आप मेढक है और वो सब नाच रहे हैं, क्योंकि अब तो वो 5 साल के लिए फिक्स हो गए, अब तो उनको आपकी वोट की कुछ नहीं पड़ी है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे। ऐसा भी होता है, बहुत जगह ऐसे केसेज आते हैं कि जो कोई अपराधी है, रेप का आरोपी है, मर्डर का है, उसे टिकट दे दिया है। क्यों दे दिया गया कि अपराधी है ये जीत जाएगा, और अगर ये जीत जाएगा तो मेरे ज्यादा विधायक जीतेंगे, ज्यादा विधायक जीतेंगे तो हम सरकार बना पाएंगे, सत्ता में रह पाएंगे। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं, राबड़ी देवी के पुत्र पाएंगे टिकट, उनकी बेटी भी पा लेगी, मान लीजिए कभी बार बेटी नहीं पा पाई तो उनके दामाद पा लेंगे, फिर उनके भी कोई उधर साले हैं वो पा लेंगे, पता चला कि कोई उनकी देवर है वो पा चुके हैं, उनकी वो है तो वो पा चुके हैं, इस तरह से भाई भतीजावाद भी बढ़ता है। तो जो असली कार्यकर्ता होते हैं ना पार्टी के, जो वाकई में जनता से जुड़े होते हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाता है। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबस एक से होते हैं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहां कूदेंगे आप, दोनों पार्टियां उसी तरह की हैं, किसको मापेंगे आप, कैसे मापेंगे, विकल्प भी तो नहीं है। अब तो जाके सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का उपलब्ध करा दिया है कि भाई आपको नहीं पसंद तो डाल दीजिए, लेकिन पहले क्या था, जैसा कर, जैसे एक तरफ क्या है वैसे दूसरे तरफ क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जस उधो तस माधो, जिसको भी दीजिए, मुड़ना तो आपको है ही। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। अब बड़े पार्टी है तो पार्टी पता चल गया कि ये जीत सकते हैं तो उसको पैसा ऊपर से भी दे देते हैं, बहाओ पैसा जीत जाओ, क्योंकि उनको तो एक वोट चाहिए, एक सीट मिल गई तो हो सकता है सरकार बन जाए। इस लोभ से छोटी पार्टियों का पैसा नहीं होता। अब जो निर्दलीय हैं तो आपको अपने अलग चिन्ह देने पड़ेंगे। अब देखिए कोई बड़ी पार्टी सपोर्ट कर रही है तो बड़ी पार्टी के पास काफ़ी ज़्यादा उसका अपना चिन्ह है, उसके कार्यकर्ता फैले हुए हैं जगह जगह पर, तो वो लोगों को आपके पक्ष में वोट देने के लिए उकसाते हैं, और आप अगर निर्दलीय हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। ये चुनौतियाँ भारत की ही नहीं है, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीजें गहरी चिंता का विषय। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? देखिए कुछ उपाय तो पहली बात तो ये है कि पहले सरकार ही सबको पैसा दे, एक फंड बना दे कि इतने ही पैसे आपको मिलेंगे। दूसरी बात कि जैसे ही चुनाव आए तो सबके खाते सील कर दिए जाएं, जो भी उम्मीदवार लड़ने वाले हैं, कि आप पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, एक बार आप पैसा निकाल लें उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, उस बढ़िया से डिटेल्स में देना चाहिए, आप छुपाएं कुछ नहीं। ये भी हो सकता है कि चुनाव आयोग ये कह सकती है, या फिर जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके बारे में पता लगाया जाए कि इनकी ये जो खर्च कर रहे हैं 70 लाख वो कहाँ से आ रहे हैं, फिर उनको ये अनुमान लगाया जाए कितने ज़्यादा पैसे ये खर्च कर सकते हैं, सघन अभियान चलाया जाए, तो ये चुनाव सुधार कुछ हो सकते हैं। अब देखिए आप आम नागरिक हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोभ में ना आए, 500,000 के चक्कर में अपना वोट ना दें, क्योंकि देखिए आप 500,000 के चक्कर में जो लोग वोट दे देते हैं उन्हें लगता है क्या हो रहा है यार, कौन 5 साल इसे लेना देना है हमको है, 1,000 रुपये के लिए तो हम वोट दे देते हैं। ये होता है क्या, छोटी चीज़ों के लिए आप बड़े चीज़ों को कुर्बान कर देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि बड़ी चीज़ें जब आपको पानी होती तो छोटी छोटी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती है, लेकिन आप छोटी चीज़ों को पाते हैं बड़ी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब मान लें कि आपके वोट से वो जीत गया जो अपराधी है, तो क्या लगता है वो अपराध नहीं करेगा? और जरा सोचिए क्या उसके अपराध का शिकार हम आप नहीं हो सकते? क्या 1,000 रुपया हमारे जीवन से, हमारे इज्जत से बढ़ के होता है? बिल्कुल नहीं। प्रिय बच्चों, आप चूंकि भविष्य के नागरिक बनने जा रहे हैं तो आपको इन विषय में सोचना चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। देखिए हमारा देश है, हम खुद शासन चला रहे हैं, हम आने वाले भविष्य के नागरिक हैं, हम अपने देश को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं जैसा आपने सुना है ना, स्वर्ग से सुंदर, वैसा बना सकते हैं। जैसे आपने एक फिल्म आई थी बीच में, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर कहता है लोगों से कि देखिए आप लोग मुझे वोट मत दीजिए पर प्लीज वोट दीजिए। मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप भले किसी को वोट मत दीजिए मगर वोट दीजिए, अभी नहीं जब आप इस अवस्था में आ जाएंगे तो। यहाँ आइए बच्चों, कहाँ पहुंचे क्या समझे में कुछ प्रश्न आपको दिए गए, बड़े प्यारे प्रश्न हैं, मैं इन प्रश्नों को लेता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका जवाब मेरे प्रश्न पढ़ने के साथ ही सोच चुके होंगे। ये भारतीय चुनावों के बारे में कुछ तथ्य हैं, इनमें से प्रत्येक पर टिप्पणी करके यह बताइए कि ये चीजें हमारी चुनाव प्रणाली की शक्ति को बढ़ाती है या कमजोरी को। पहली, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 12% ही है। मैं जानता हूं मेरे बच्चों आपके दिमाग में कौन गया होगा कि बिल्कुल ये हमारी कमजोरी को दिखाता है। देखिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो हमारी जनसंख्या में 49% महिलाएं हैं, यानी कि 100 को ले लें तो 49 महिलाएं हैं, और पता चला लोकसभा में कितने तो 12 हैं, हुई ना इंसाफी, ये लोकतंत्र को क्या करेगा कमजोर, क्योंकि लोकतंत्र तो भागीदारी से बनता है, यहाँ जन की भागीदारी है ही, है ना। चुनाव कब हो इस बारे में अक्सर चुनाव आयोग सरकार की नहीं सुनता, देखिए ताकत है सरकार की, क्यों सुने भला, क्यों सुने सरकार की, सरकार तो अपने हिसाब से कहेगी, तो ये देखना उसकी तख्ती है। यहाँ पर आप स्पष्ट होंगे, 16वीं लोकसभा के 440 से अधिक सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से भी अधिक है, मुझे लगता है कि कमजोरी है, 1-1 करोड़ रुपए से संपत्ति अधिक हो गई है। भाई आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि 70-80 हजार मिल भी रहा है आपको, 70 हजार मंथ मिले, साल भर में 8,40,000, 5 साल में आपके कुल पैसे हुए 42 लाख, भत्ते उत्ते मिला लें कि ठीक है 20 लाख और ले लें 62 लाख, तो फिर भी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे अर्जित कर लिया आपने,
ये निश्चित रूप से हमारी कमजोरी को दिखला रहा है। चुनाव हारने के बाद एक मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे जनादेश मंजूर है। देखिए हमारी ताकत, आपको जनादेश मानना पड़ेगा, जनता का जो हुक्म है वो मानना पड़ेगा। हाँ, अगर आप केजरी बवाल हैं तो ये कह सकते हैं कि भाई वो देखिए वहां पे ईवीएम गड़बड़ था या केंद्र सरकार की मतलब थी, तो इस तरह आप कह सकते हैं, वरना आपको जनता का आदेश मानना चाहिए। प्रिय बच्चों, पीछे में कुछ छोटी छोटी छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं जिनकी व्याख्या की गई है, मैं भी आपको थोड़े बहुत व्याख्या कर देता हूं। चुनावी धांधली, आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि पैसा देना, डराना, धमकाना, लोभ देना, लालच देना, कुछ झूठा प्रचार कर देना, झूठे वायदे कर देना। देखिए झूठे वायदे करना तो मुझे लगता है कि इस पर तो आरोप तय होने चाहिए, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेने चाहिए कि अगर आप झूठे वायदे करेंगे तो आपको आपके सत्ता से हटाया जा सकता है, आपके पद से हटाया जा सकता है, आपकी सरकार बर्खास्त की जा सकती है। क्योंकि ये तो वादा तेरा वादा वाला तो नहीं है कि आपने वादा कर दिया फिर आप बड़े गए भैया, जब तक है तब तक मिल रहे हैं और फिर उसके बाद एक बार आप चुनाव जीत गए तो तुम तो बड़े दगाबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, भूल गए, चल दिया, हमने कह दिया कि ये करेंगे वो करेंगे, जनता बेचारी बैठी हुई है और आप जाके आराम से वहां पे एयरलाइंस में घूम रहे हैं, बेवजह का हल्ला कर रहे हैं। कभी कभी तो आम जनता के मन में इतना क्रोध आता है कि उनके गाढ़ी कमाई को संसद में बेवजह हल्ला करने में व्यस्त किया जाता है, बेवजह। निर्वाचन क्षेत्र, इसके बारे में मैं आपसे बात कर ही चुका हूं कि वो ऐसा क्षेत्र जहां से भौगोलिक क्षेत्र, मतलब आप एक एरिया फिक्स कर लेते हैं कि यहाँ के लोग वोट देंगे, कोई ना कोई चुन के जाएगा और एक प्रतिनिधि जाएंगे, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, छोटा निर्वाचन क्षेत्र भी हो सकता है, आप वार्ड पार्षद को चुनते हैं, सांसद को बहुत बड़े निर्वाचन क्षेत्र में भी आते हैं। एक बात प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि प्लीज इसे ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, हम विधायक और सांसद को चुनते हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को चुनते हैं। तो थोड़ा सा ये ट्विस्ट बताना, आप इसे ध्यान रखेंगे। आचार संहिता के बारे में आप जानते हैं कि ऐसे नियम कायदे कानून जिसपे दोनों पार्टियां सहमत हो, इसमें से दोनों का ही लाभ होता हो, दोनों का ही हित सत्ता हो, उसे हम आदर्श चुनाव, उसे हम चुनाव संहिता कहते हैं। प्रिय बच्चों, मैंने आज आपको जो बताया कि भारत में लोकतांत्रिक चुनाव है ना, उसके बारे में मैंने तर्क दिया कि देखिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग है, फिर इसके बाद ये भी बातें हैं कि यहाँ पे जनता का प्रतिशत बढ़ा है वोट का, सारे लोग वोट देना चाहते हैं, ये मानते हैं कि उनके वोट से तस्वीरें बदल सकती हैं, है ना। लेकिन कुछ समस्याएं भी हमारे हैं कि बहुत बार आप ऐसा सुनते हैं कि जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं वो सामने आ जाते हैं, ये भी देखने में आता है कि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे लोकतांत्रिक तस्वीर बहुत अच्छी है, हमने बहुत से दूसरे विकसित देशों की तुलना में बहुत प्रगति की है, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और मैं कहूँ तो सबसे बेहतरीन लोकतंत्र है। जिस तरह से हमने परिपक्वता लोकतंत्र में दिखाई है, जो मैच्योरिटी दिखाई है, शायद ही मुझे लगता है कि कोई ऐसा देश हो, शायद ही कोई ऐसा बड़ा देश हो जहां भारत के चुनावों की चर्चा न की जाती, बल्कि भारतीय लोकतंत्र तो ऐसा है कि जो विदेशों में भारतीय रहते हैं वो डाक के द्वारा अपना वोट बेचते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त भारत की चुनाव प्रणाली है। प्रिय बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इसके बारे में, चुनाव के बारे में आपको एक बेसिक समझ हो गई होगी। अगर आप लोगों से थोड़े जीवंत बातचीत करेंगे तो इसके बारे में आपको और जानकारी होगी। लाख समस्याएं हमारे चुनाव के बारे में है, लेकिन दुष्यंत कुमार ने कहीं कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो ये मेरे यारों। तो भारतीय चुनाव में भी जो समस्याएं हैं वो जरूर ठीक होंगी, जरूर होंगी, क्योंकि हम युवा वर्ग हैं, आप भी आने वाले वर्ग हैं, हम सब मिलकर अपने देश को चुनाव के माध्यम से सुधार सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छा रोचक लगी होगी, हम सब ने साथ मिलकर पढ़ा, बल्कि कहूं तो सीखा, ये बेहतर लगा होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मैं हूं आपका दोस्त सावन कुमार, अगले ऑडियो तक के लिए बाय बाय, सबा खैर, टाटा।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।